जी आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, हमारी रिपोर्ट तैयार नहीं थी, लेकिन हम इसी मौजू को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सदर फ्रांसवा ओलान कल सदर ओबामा से यहां वाशिंगटन में मिले। इस सिलसिले में इस वक्त बताया जा रहा है कि बैनुल अक्वामी तालुकात के माहिर प्रोफेसर फैज़ान हक लाइन पर हैं। प्रोफेसर फैज़ान, आपको खुश आमदेद।
जी बहुत शुक्रिया।
तो जैसे कि आपकी इल्म में है कि इस वक्त फ्रांसवा ओलान जर्मनी के चांसलर से मिलने जाएंगे, उसके बाद वो रूस के सदर से मिलेंगे, आप क्या देखते हैं कि किस तरह का इत्तेहाद बनने जा रहा है इस वक्त दाइश के खिलाफ?
जी सबसे पहले तमाम सुनने वालों को बहुत सलाम दुआ और प्यार, अल्लाह ताला उनको अपनी ईमान में रखे। इस वक्त जब से फ्रांस में पेरिस में वो हमले हुए हैं, उसकी वजह से हम देखते हैं कि यूरोप में तो तूफान मचा ही है, लेकिन फ्रांस पहली दफ़ा अमेरिका और दूसरे ममालिक जो हैं उनके साथ कोऑपरेट करने चला है। और हम देखेंगे कि एक इत्तेहादियों जो इत्तेहादी हैं, जो कि कोलिशन जिसको हम कहते हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर इकट्ठे काम किया, उसमें जो बड़े बड़े प्लेयर्स होंगे वो अमरीका है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, फ्रांस है और कुछ और ममालिक भी। और लेकिन इसमें जैसे आपने सुना होगा, कल प्रेसिडेंट ओबामा ने ये बात कही और फ्रांस के सदर ने कुछ रिजर्व अल्फाज में, मगर उन्होंने भी ये बात की कि जो रूस है यानी रशिया जो है वो और ईरान जो है उनको बाकी दुनिया के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। कि एक तरफ तो चलें दाइश वाले जो हैं वो तो पागल हैं ही, लेकिन उनके जो पागलपन की वजूहात हैं जिसकी वजह से वो लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं वो हैं प्रेसिडेंट असद, बशार अल असद। और बशार अल असद जो हैं उनको बहरहाल जाना होगा। और ये आपको याद है, हमने पहले भी गुफ्तगु की थी कि उनके जाए बगैर, नया रजीम आए बगैर सीरिया में कोई पायदार अमन कायम नहीं हो सकता, चाहे रूस और कुछ और ममालिक इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि ये सिलसिला जो है वो एक बहुत बड़ी वजह है उस खाना चंगी की, और उनको वहां से जाना होगा।
प्रोफेसर फैज़ान, आपकी इल्म में है कि इस वक्त जो फ्रांस के सदर हैं उन्होंने भी कहा कि वो ज़मीन पे कोई इस वक्त ट्रूप्स नहीं उतारेंगे, और अमेरिका भी नहीं चाहता है कि इराक और अफ़गानिस्तान के बाद वो कुछ ज़मीन पे अपनी फ़ौजें भेजे। ऐसे में आपने सुना होगा, यहाँ तज़ियाकारों का कहना है कि ये जंग नहीं जीती जा सकती जब तक कि ज़मीनी कोई कार्रवाई ना हो। इस सिलसिले में जो हम सुन रहे हैं वो ये कि बशारुल असद का होना ज़रूरी है ताकि उनके ज़रिए दाइश के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी जाए। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे?
जी देखिए, जो ज़मीन पर लड़ी जाने वाली लड़ाई है वो बाहर के किराए के फ़ौजियों के साथ नहीं लड़ी जा सकती। पाकिस्तान ने भी दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है, जब तक खुद हमारी यानी पाकिस्तान की फ़ौज मैदान में नहीं उतरी और डिटर्मिनेशन के साथ, कुव्वत इरादी के साथ, तो कामयाबियां जो हैं वो हासिल नहीं की जा सकी। तो जो ममालिक इस वक्त वहां पर इस दाइश की वजह से डायरेक्टली हिट होते हैं, उसमें कर्दिस्तान के लोग हैं और इराक के लोग हैं, सीरिया के लोग हैं, और उसके साथ सऊदी अरब है और ईरान है
जी।
और जब तक ये लोग खुद अपने फौजी और अपनी आर्मी और अपने रिसोर्सेज वसाइल को इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर अमरीकी वहाँ जाते हैं या फ्रांसीसी वहाँ जाते हैं या रशियन जाते हैं, वो कुछ अरसे के लिए जाएंगे और जब उनकी कीमत जो है वहाँ रहने की बहुत बढ़ जाएगी वो वहाँ से चले जाएंगे
जी।
आखिर में ये जंग वहाँ के रहने वाले लोगों की जंग है और उन्हीं को ये लड़नी है
जी।
और मेरा ख्याल में इसमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये ममालिक एक बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये कि मेरे ख्याल में जो मैं सुन रहा हूँ खबरों में और मुख्तलिफ जगहों से, तो मुझे लग रहा है कि एक कंसेंसस बन रहा है कि जिसमें ये ममालिक जो हैं इनकी क्लोज कोऑर्डिनेशन होगी, और इनके साथ अगर हम मगरबी ममालिक के वसाइल को डाल दें और उनकी नो हाउ टेक्नोलॉजिकल हेल्प को डाल दें, तो मेरे ख्याल में कामयाबी के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि फ्रांस के या अमरीका के फौजियों की तादाद वहाँ बढ़ाने से ये मसले में शायद वक्ती तौर पर कुछ फर्क पड़े, लेकिन अगर उसके जो दूरस्थ नतायज हैं वो अमेरिका के लिए भी, मगरबी ममालिक के लिए भी और वहाँ के लोगों के लिए भी अच्छे नहीं होंगे।
अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त आप बरतानिया का क्या रद्द अमल देखते हैं? बरतानिया के अलावा यूरोपियन ममालिक जिनसे इमदाद मांगी जा रही है, सदर ओबामा इस वक्त कह रहे हैं कि उन्हें ज़्यादा फ़ौजें जो हैं वो देनी चाहिए, ज़्यादा जिसे कहते हैं खुफिया मालूमात देनी चाहिए, ज़्यादा पैसा इसमें डालना चाहिए। आप क्या देखते हैं कि यूरोप की तरफ से क्या रद्द अमल सामने आ रहा है इस
जी,
पर?
प्रेसिडेंट ओबामा जो ये काम कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन आपको आपको जैसे आपको याद होगा कि 9/11 के बाद जो यूरोपीय ममालिक थे वो उनके उन्होंने हमायत तो ज़रूर की थी अमेरिका की। और जब अमेरिका जंग करने के लिए निकला घर से अफगानिस्तान में और बाद में इराक में, तो बहुत कम ममालिक थे उनमें से जिन्होंने हमारे कदम के साथ कदम जमा के इस जंग में हिस्सा लिया। और ये बात जो है, क्योंकि अब यूरोप के अपने घर में आग लगी है तो उनको एहसास हुआ है कि ये कितना खतरनाक मामला है और उनको ये कितना संजीदगी से लेना चाहिए। और इसीलिए प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा है कि ये जबानी कलामी जो है वो बात ज़्यादा दूर तक नहीं चलेगी। जो यूरोप के ममालिक हैं उनको खुद आगे बढ़ के अपने वसाइल शेयर करने होंगे, मालूमात शेयर करनी होगी। और अगर वो ये नहीं करेंगे तो, अगर आप देखिए ना, जो अमेरिका है वो 50 मुल्क हैं इकट्ठे बैठे हुए, इसलिए हम इसे यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि मुतहदा रियासत है अमेरिका कहते हैं।
जी,
वहां पर यूरोपियन यूनियन जो है वो अभी, वो एक पंजाबी का मुहावरा है कि वो अभी तक अपने जूते ढूंढ रहे हैं। तो उनको जब तक ये कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे आपस में, एक ये नहीं कि वो अपने सरहदों को भूल जाएं, मगर जब तक वो कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, यही वो गैप्स हैं जिसके अंदर दहशतगर्द तंजीमें जैसे कि अलकायदा है या आइसिस है वो घुस जाती हैं, और उनके लिए और उनको लिए उनके लिए आसानियां हो जाती हैं। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो फ्रंट स्टेट्स हैं, जिनकी जिनको मैं जितना एम्फोसिस करूं उतना कम है, जो फ्रंट स्टेट्स हैं इस जंग में, तुर्की है, पाकिस्तान है और ईरान है और सऊदी अरेबिया है, जो फ्रंट स्टेट्स हैं इनको, इनकी मदद के बगैर, इनकी कोऑर्डिनेशन के बगैर, इनकी विलिंगनेस, मर्जी जो हो इनको, जिसको कहते हैं कि सियासी कुव्वत इरादी, पॉलिटिकल विल जो है, उसके बगैर ये मसला हल करना मगरबी या यूरोपी ममालिक के बस में नहीं है।
जी, आप ये बताएं, आपके इल्म में है कि रूस का जो है वो एक जहाज़, उसको तुर्की ने मार गिराया। बताया जाता है आज जो ताज़ा इत्तलात हैं उसके मुताबिक उनका एक पायलट जो है वो तो बच गया, दूसरा जो है उसको मार दिया गया। ऐसे में आप क्या देखते हैं कि रूस और अमेरिका दोनों किस हद तक मुत्तहिद हो सकते हैं, क्योंकि नेटो में भी तो फूट पड़ गई है इसकी वजह से। तो जब फ्रांसवा ओलांद जाएंगे और रूस के सदर से मिलेंगे, आप कोई वसी इत्तेहाद देखते हैं दाइश के खिलाफ?
जी, इसी वजह से जो आपके सामने मैंने अपने दलाइल पेश किए कि रूस जो है वो जब घर से निकला था इसको जंग को लड़ने के लिए, तो वो उनकी बड़ी बॉय जो है ना, वो जो है काउबॉय टाइप मेंटालिटी से कि हम शूट कर देंगे और हम लोगों को बता देंगे हम क्या कर रहे हैं। और उनका, आपको मालूम है कि वो दहशतगर्दी का शिकार हो चुके हैं, उनका एक एयरलाइनर भी डाउन हुआ, और उसके बाद ये कि उनकी ये जो बड़ी हुई खुद एतमादी थी उसने भी बहुत नुकसान पहुंचाया, क्योंकि उनका ख्याल था कि तुर्की जो है वो दब जाएगा। और तुर्कों के और रूस के दरमियान जो तारीखी लिहाज से हमेशा दुश्मनी रही है, जार के ज़माने से लेकर और सल्तनत उस्मानिया के ज़माने से, और वहाँ पर आपस में उनका, जिसको कहते हैं ना, एतमाद की फ़जा बिल्कुल नहीं है। और तुर्की जो है वो ऐसे ही लेता है जैसे पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के खिलाफ लेते हैं कि किसी ने वायलेशन कर दी हवा की तो, हवाई हदूद की, तो बहुत सेंसिटिव हैं। और तुर्की ये नहीं चाहता कि उसका किसी भी तरह स्टेचर जो है दुनिया की नज़र में ऐसे हो कि हम कमज़ोर हैं या ये कि हम बर्दाश्त कर लेंगे कि हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी की जाए। तुर्की जो है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि तुर्की जो है वो इस्लामी ममालिक में उसका एक बहुत स्टेचर है, और वो स्टेचर यानी कि एक मजबूत मुल्क के हिसाब से कंप्रोमाइज़ करने पर तैयार नहीं है। और उनकी ये रिस्पेक्ट अगर नहीं देंगे उनको, चाहे वो रूस हो या कोई और हो, तो इसी मसले का वो हल नहीं निकल सकता। ये जो 4 ममालिक हैं इनको बहरहाल किसी तरह मेज़ पर आना पड़ेगा और बात करके आगे बात बढ़ेगी। और मेरी, मुझे उम्मीद है कि जहाँ फ्रांस के सदर रूस और अमेरिका गए हैं, वो कोशिश करके इस्तांबुल, तेहरान और रियाज भी जाएं और इस्लामाबाद, ताकि इन ममालिक से मिलके वो एक काम कर सक ये काम हो सके, क्योंकि दाइश जो है सबसे बड़ा खतरा उसका जो है वो वहां पर है के लोगों को है। जैसे हम जानते हैं कि उन्होंने कई शहरों में जाकर कत्लेआम किया है, उन्होंने कई शहरियों को मारा है।
जी
उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो ये जंग को अपनी जंग समझें, फ्रांस और अमेरिका की जंग मत समझें।
अच्छा जी, आप हमारे साथ रहें। इस दौरान हमें बाज़ लोगों ने कॉल भी किया है, उनके सवालात भी हम सुनते हैं। इस दौरान हमें कॉल किया है मियाँ वाली से मुरीद ख़ान ने, कोहाट से ख़ान अकबर आफरीदी ने। इस वक्त एक आईडी ब्रेक लेते हैं।
What's up, पाकिस्तान? क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। What's up, पाकिस्तान? क्या सीन है पाकिस्तान? urduvoa.com।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओलांद की सदर ओबामा से वाशिंगटन में मुलाकात के बाद के फैसलों के बारे में। इस वक्त हमारे साथ बफलो स्टेट यूनिवर्सिटी में बैनुल अक्वामी ताल्लुकात के माहिर प्रोफेसर फैज़ान हक हैं, और अगर कोई सवाल करना है तो उनसे कीजिए। मियाँ वाली चलते हैं जहाँ से मुरीद ख़ान कुछ कहना चाहते हैं। जी जनाब, कहिए मुरीद खान।
कर रहा हूँ, हेलो दोस्त, क्या साथ कर रहा हूँ। मेरी मेहमान से गुजारिश है कि ये जो फ्रांस के सदर ने कहा है कि हम बदला लेंगे, तो वो किससे बदला लेंगे? और जब तक कुएं से कुत्ता नहीं निकालेंगे तो कुआं कैसे पाक होगा? मसला कश्मीर, मसला फलस्तीन, और एक आदमी कचरे के ढेर पर खड़ा रिजक तलाश कर रहा है और एक सोने के ढेर पर खड़ा है, तो वो कैसे अमन होगा? गोले बारूद पर खरबों डॉलर खर्च करने के बजाय भूख और तालीम पर खर्च क्यों नहीं किया जाता?
शुक्रिया आपके कॉल करने का। कोहाट से हमें कॉल किया है खान अकबर आफरीदी ने। जी जनाब, कहिए।
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
फ्रांस का वाकया वाकई यकीनन काबिल नफरत है, लेकिन अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने CIA की झूठी रिपोर्टों पर जिस तरह से इराक और अफगानिस्तान को कंधा बनाया हुआ है, और इस जुर्म में मुलव्वस जो मुजरिम है अभी तक वो इंसाफ के कटारे में नहीं क्या कर दिए गए हैं, जिससे आज भी वही दाइश पैदा हो रहे हैं और अलकायदा पैदा हो रहे हैं और बेगुनाह लोगों का खून बह रहा है। फैजान साहब से मेरा एक ही क्वेश्चन है।
जी जी।
टोनी ब्लेयर के इराकी अवाम और इंसानियत से माफी मांगने पर, खुद को मुजरिम कहने पर, क्या अमरीका और यूरोपीय ममालिक का जमीर जाग चुका है, या उनकी मुजरमान हरकतों से मजीद दाइश और अलकायदा पैदा होंगे?
अच्छा, शुक्रिया 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 आपके कॉल करने का। प्रोफेसर फैजान, आप के इल्म में है कि यहाँ अमेरिका के अंदर भी ये सोच पाई जाती है कि इराक में जाना गलती थी। आप क्या समझते हैं इराक का जो वाकया हुआ वो किस हद तक दाइश को पैदा करने में जिम्मेदारी अदा करता है?
जी, अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो हमें ये पता चलेगा कि दाइश की जो पैदाइश है उसमें ये जो पॉलिसीज थी इराक पर हमला करने की, और सदाम हुसैन का रजीम जो है उसको उसको ख़त्म करने की, उन्होंने एक पार्टिसिपेशन हुई है उनकी, और वो बहरहाल कुछ जिम्मेदारी जो है वो मगरबी ममालिक की भी है जिसमें अमेरिका भी शामिल है, और वहाँ के लोगों जिस मुश्किल से गुजरे हैं और जिस हालात से गुजरे हैं वो भी एक इंतहाई तकलीफ दह बात है। और जैसे आपके पहले जो कॉलर जो थे उन्होंने ये कहा कि फ्रांस किससे बदला लेगा, फ्रांस वाले जो हैं वो बहरहाल आइसिस से ही बदला लेंगे, इसलिए कि आइसिस के खिलाफ जब तक दो महाज पे लड़ना है, एक तो जाहिर है महाज जो उन्होंने खोला है वायलेंस का उस पर लड़ना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो आइडियोलॉजिकल यानी कि नज़रियाती महाज है उसकी तरफ तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी है। और उस सिलसिले में इसीलिए जो कोलिशन है इन ममालिक का, जिनको मैं फ्रंट स्टेट्स का नाम देता हूँ, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आपस में इनके साथ नज़रियाती तौर पर जंग करें, جس میں ایک پارٹی وہ کردز کی ہے اور کردستان کا زیادہ تر علاقہ جو ہے وہ کردوں نے آزاد کروا لیا ہے آئی ایس ایس سے، لیکن اس سے آگے ان کی پہنچ سے باہر ہیں. دوسری طرف عراق میں جو عراق کی گورنمنٹ ہے ان کو کچھ عقل کے ناخن لینے پڑیں گے، کیونکہ اور ان کی جو کلید ہے وہ تہران میں ہے، یعنی کہ ایران کے پاس ہے. اسی طرح جو ترکی کی مدد کے بغیر اور سعودی عرب کی مدد کے بغیر آئی ایس ایس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور ان کو ٹیبل پہ لانا پڑے گا. اور نظریاتی لحاظ سے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آئی ایس ایس نے جو نام اپنا رکھا ہے وہ اس سوچ کے مطابق ہے کہ آخری جو جنگ ہوگی جو جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی، اور حضرت عیسیٰ اور امام مہدی ایک طرف ہوں گے اور دجال ایک طرف ہوگا، یہ وہ اس مائنڈ سیٹ سے وہ لڑ رہے ہیں. اور اس مائنڈ سیٹ کو چیلنج کرنا نظریاتی لحاظ سے بہت ضروری ہے، اور اگر یہ ہم چیلنج نہیں کر پاتے تو جو مشرق وسطیٰ جو ہے اس کو سمجھیں کہ وہاں پر ایسی آگ لگے گی جو کہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. اور یہ ابھی بھی ممکن ہے کہ ہم نظریاتی طور پر اس کے ساتھ کچھ کر سکیں. اگر ہم تاریخ میں پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ایسا ہی وقت اس وقت آیا تھا کہ ایک طرف تو کروسیڈرز تھے وہاں پر مشرق وسطیٰ میں، دوسری طرف سے منگولز جو تھے انہوں نے حملہ کر دیا تھا، اور میدان جالوت میں پھر جو جنگ آخری فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی. اور اس وقت بھی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اب زمانہ ختم ہونے والا ہے، یہ آخری جنگ ہے. اور اس وقت بھی بہت سے علماء آگے آئے تھے اور انہوں نے اس بات کو بتایا تھا کہ یہ نظریاتی طور پہ انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ وہ وقت نہیں ہے. اسی طرح اس وقت ہمارے ہاں نظریاتی جنگ کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، یہ ایک ایسا ویکیوم، خطرناک ویکیوم پیدا ہو رہا ہے جس کا فائدہ آئی ایس ایس اور القاعدہ کے لوگوں کو ہو رہا ہے. اور اس میں ہمیں نظریاتی طور پر ان حکومتوں کو آگے بڑھنا پڑے گا اور ان کو آواز نکالنی پڑے گی تاکہ ہم ان کم از کم نوجوانوں کا راستہ روک سکیں ذہنی لحاظ سے جو کہ سیڈیوس ہوتے ہیں ان کے پروپیگنڈے سے.
بہت شکریہ. اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پروفیسر فیضان حق کا جو بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے ماہر ہیں اور پروفیسر ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ.